آپ ہیں ایس بی ایس ہندی کے ساتھ اور خبروں کے لیے جائیں sbs.com.au/hindi پر۔
विक्टोरियन सरकार द्वारा कोरोना वैक्सीन के घरेलू निर्माण के लिए $50 मिलियन खर्च करने की योजना। पुलिस अधिकारी डेरिक चौवेन जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या का जूरी द्वारा दोषी करार। और भारत में कोरोना संकट लगातार जारी, सामने आई एक दिन में अब तक की सबसे ज्यादा मौतें। अब खबरें विस्तार से। विक्टोरिया में तीन बड़े स्थलों पर बुकिंग या वॉक इन के लिए अब कोविड-19 के बड़े टीकाकरण केंद्र खुल गए हैं। इन केंद्रों को महामारी के खिलाफ लड़ाई के लिए एक बड़े कदम के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि विक्टोरिया के मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी ब्रेट सटन ने मेलबर्न एग्जीबिशन बिल्डिंग में बने एक बड़े टीकाकरण केंद्र पर जाकर एस्ट्राजेनेका वैक्सीन की पहली खुराक ली। प्रोफेसर सटन ने के टीकाकरण के बाद माना जा रहा है कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन को लेकर अब लोगों में विश्वास बढ़ेगा, क्योंकि इस वैक्सीन से जुड़े रेयर ब्लड क्लॉट्स के मामले के बाद लोगों की चिंताएं बढ़ गई थी। राज्य में बड़े पैमाने पर टीकाकरण केंद्र अब 70 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए खुल गए हैं। विक्टोरिया में टीकाकरण प्राप्त करने वाले जॉर्ज टर्वियक और लीसा हीथ, जिनकी उम्र 70 साल से ज़्यादा है, उनका कहना है,
Great. Sort of, I thought, let's get it out of the way. I've got less chance of transmitting the virus if I ever had it, and get it over and done with. I'm glad to be able to get the jab and make sure that I'm not spreading the virus if I ever have it.
Fine, quick, efficient, and they did a good job. I phoned up, they answered immediately. I booked and came in here, checked in, and it all went very smoothly.
Victorian सरकार ने घोषणा की है कि वो mRNA वैक्सीन टेक्नोलॉजी के घरेलू निर्माण क्षमताओं को स्थापित करने के लिए $50 मिलियन का निवेश करेगी। इस पहल का मतलब ये है कि विशिष्ट प्रकार के टीके जैसे कि फाइजर और मॉडर्न शॉट्स पहली बार ऑस्ट्रेलिया में उत्पादित किए जा सकेंगे। एक्टिंग प्रीमियर जेम्स मैरिलिनो ने कहा कि ये मेलबोर्न के प्रमुख विश्वविद्यालयों के साथ एक सहयोगात्मक परियोजना है, जिसे विकसित होने में लगभग 12 महीने लगेंगे, और जब ये स्थापित हो जाएगी तो ये सदर्न हेमिस्फीयर की ऐसी पहली परियोजना होगी।
What we have seen through the course of the pandemic has been the benefits of mRNA vaccines. Low cost, the rapid development, high efficacy, safe administration. This is a great vaccine. What we have also seen through the course of the pandemic are the challenges of global insecurity of supply. That is why it is a national priority to establish production right here in Australia.
आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया में फिलहाल केवल एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के निर्माण की क्षमता घरेलू है। मिनियापोलिस के पूर्व पुलिस अधिकारी डेरिक चौवेन को पिछले साल मई में गिरफ्तारी के दौरान गर्दन पर चाकू मारने के बाद जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या का दोषी पाया गया है। जूरी ने डेरिक चौवेन को दूसरी डिग्री की हत्या का दोषी करार करने में लगभग 11 घंटे का समय लिया। आपको बता दें कि अब डेरिक चौवेन को 40 साल की सजा हो सकती है, हालांकि सजा में अभी 2 महीने लगेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि प्रणालीगत नस्लवाद के खिलाफ लड़ाई में देश के लिए दृढ़ विश्वास एक विशाल कदम हो सकता है।
No one should be above the law. Today's verdict sends that message. We can and we must do more to reduce the likelihood that tragedies like this will ever happen and occur again. To ensure the black and brown people or anyone so they don't fear the interactions with law enforcement. And this takes acknowledging and confronting head on systemic racism and the racial disparities that exist in policing and in our criminal justice system more broadly.
जॉर्ज फ्लॉयड के परिवार का कहना है कि उनकी मौत के बाद पूर्व पुलिस अधिकारी की सजा सिर्फ एक शुरुआत है। राष्ट्रपति बाइडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने फ्लॉयड परिवार को फोन करके कहा कि सरकार देश में प्रणालीगत नस्लवाद का मुकाबला करने के लिए और काम करेगी। ऑस्ट्रेलियाई और न्यूजीलैंड के अधिकारियों को विश्वास है कि मंगलवार यानी कि 20 अप्रैल को कोविड-19 मामला आने के बाद भी ट्रांस तस्मान बबल व्यवस्था खुली रहेगी। इस बीच न्यूजीलैंड ने कोविड 19 टीकों को लेकर नए सिरे से जन सूचना अभियान शुरू किए हैं ताकि निवासियों को विश्वसनीय, निष्पक्ष और तथ्यात्मक जानकारी मिल सके। शिक्षा मंत्री क्रिस हिपकिंस का कहना है कि वो निजी क्षेत्र के संगठनों और एजेंसियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को लिख रहे हैं कि जो सीमा पर काम कर रहे हैं वो टेस्टिंग को अनदेखा ना करें।
Under the border worker testing regime, they need to make sure that their workers are being tested, and they need to make sure that they are keeping records of that, and I'll be reminding them of that. It is an essential employer responsibility. It's underpinned by the border worker testing register, but as I've indicated before, only employers are in the position to ensure that 100% of those who need to be tested are being tested.
इस बीच न्यूजीलैंड ने अपनी स्वास्थ्य सेवा में बदलाव करते हुए ब्रिटेन की राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा के समान एक एकल राष्ट्रीय निकाय स्वास्थ्य सेवा का ऐलान किया है। सरकार प्रणाली में नस्लीय असमानताओं को सुधारने के प्रयासों में सरकार एक इंडिजीनियस स्वास्थ्य सेवा के लिए एक राष्ट्रीय निकाय की भी स्थापना कर रही है। अब सुनते हैं भारत की खबरें। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के नए मामलों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में लगभग 3 लाख नए मामले सामने आए हैं। इसी के साथ चिंता की बात यह है कि संक्रमण के चलते मृत्यु दर भी बढ़ गई है और देश भर में कुल 2023 मौतें दर्ज की गई हैं। दूसरी लहर का प्रकोप इतना ज़्यादा है कि सिर्फ अप्रैल में ही अब तक 34 लाख से ज़्यादा नए केस सामने आ चुके हैं और मौतों का आंकड़ा भी 20,000 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे नए कोरोना मामलों के बीच दिल्ली सरकार अब कम पड़ रहे ऑक्सीजन सिलेंडर की परेशानी से भी जूझ रही है। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में 20,000 से अधिक मामले सामने आए हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहले ही सूचित किया था कि अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी है और अब दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने जानकारी दी है कि दिल्ली के कई अस्पतालों में मेडिकल ऑक्सीजन अब कुछ ही घंटों के लिए उपलब्ध है।
दिल्ली में जिस तरह से तेजी से कोरोना के मामले बढ़े हैं और इस स्ट्रेन में लोगों को ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, ऐसा डॉक्टर्स का कहना है, तो ऐसे में दिल्ली में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले दिल्ली को जितनी ऑक्सीजन सेंट्रल ने दे रखी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट कोटा फिक्स करती है हर एक राज्य का, तो पहले जितनी ऑक्सीजन दिल्ली को दे रखी थी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उससे अब दिल्ली का काम नहीं चल रहा। हमने पिछले एक हफ्ते से बार बार सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि दिल्ली का कोटा बढ़ा दीजिए, मरीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उस पर अभी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया और आज हमारे साथ स्थिति यह है कि दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों में 8 से 10 घंटे की, 12 घंटे की ऑक्सीजन बची है।
20 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश को संबोधन के बाद महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनकर उन्हें निराशा हुई है क्योंकि उन्होंने किसी भी तरह के राहत पैकेज की घोषणा नहीं की।
प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्र को संबोधन करते समय कोविड को लेकर अपने विचारों को रखा, लेकिन प्रधानमंत्री के संबोधन में जो कठिन परिस्थिति देश में निर्माण हुई है, केंद्र सरकार क्या सहायता दे रही है, इसका किसी भी प्रकार का कोई जिक्र प्रधानमंत्री जी ने नहीं किया। परिस्थितियों के उलट लॉकडाउन से बचे ये सलाह देने का काम उन्होंने किया। दूसरी तरफ केंद्र सरकार को राज्यों को मदद देने की जरूरत है, आम और गरीब मजदूरों को कोई मदद का ऐलान करने की जरूरत है।
अब सुनते हैं डॉलर का हाल। आज यानी बुधवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 58.23 रुपये और अमेरिकी डॉलर की तुलना में एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत 77 सेंट्स थी। अब खबरें खेल जगत से। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने कोरोना की दूसरी लहर के बढ़ते खतरे को देखते हुए देश के सभी फैंस और नागरिकों को कोरोना प्रोटोकॉल के पालन करने की अपील की। दिल्ली पुलिस के द्वारा शेयर किए गए एक वीडियो में कोहली ने सभी से इस मुश्किल समय में खुद की और परिवार वालों की देखभाल करने की अपील की। इसके अलावा कोहली ने सभी को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की भी बात कही।
जहां भी आप एसेंशियल सर्विसेज के लिए या जरूरी काम के लिए अगर निकल रहे हैं तो प्लीज मास्क पहनिए, सामाजिक दूरी का पालन करें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें। ये सब प्रिकॉशंस लेना बहुत जरूरी है और अगर इस महामारी से हमें दोबारा से एक बार उतनी ही दृढ़ता से लड़ना है तो हमें हमारे पुलिस वाले भाइयों का और बहनों का साथ देना होगा और इसमें हम सबकी जिम्मेदारी बनती है। और जैसा कि आप सब जानते हैं और मैंने पहले भी बोला है कि आप सुरक्षित तो हमारा देश सुरक्षित।
आईपीएल के देर रात चले मुकाबले में दिल्ली कैपिटल ने मुंबई इंडियंस को एक रोमांचक मैच में हरा दिया। मुंबई के 138 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए दिल्ली ने सलामी बल्लेबाज शिखर धवन और स्टीव स्मिथ की पारियों की बदौलत 19.1 ओवर में 4 विकेट पर 138 रन बनाकर जीत दर्ज की। ललित यादव ने भी नाबाद 22 रन की पारी खेली। मुंबई की टीम से मिश्रा ने 24 रन देकर 4 विकेट लिए और 137 रन ही बना सकी थी मुंबई टीम जब वो पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी। अब लेते हैं मौसम की जानकारी। बात करते हैं कल यानी गुरुवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल की। शुरुआत करते हैं पर्थ से जहां आसमान बिल्कुल साफ रहेगा। अधिकतम तापमान रहेगा 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 13 डिग्री सेल्सियस। एडिलेड में आपको आंशिक बादल देखने को मिलेंगे। यहां का अधिकतम तापमान रहेगा 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 12 डिग्री सेल्सियस। मेलबर्न में बारिश की संभावना रहेगी। यहां का अधिकतम तापमान रहेगा 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 10 डिग्री सेल्सियस। मेलबर्न के बाद बात देश की राजधानी कैनबरा की जहां कल आसमान में बादल रहेंगे। यहां के तापमान की अगर बात करें तो अधिकतम तापमान रहेगा 16 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 1 डिग्री सेल्सियस। अब बात करते हैं सिडनी की जहां आसमान बिल्कुल साफ रहेगा, मौसम बढ़िया रहेगा। यहां का अधिकतम तापमान रहेगा 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 11 डिग्री सेल्सियस। ब्रिस्बेन में आंशिक बादल जरूर रहेंगे लेकिन बारिश की कोई संभावना नहीं है। अधिकतम तापमान रहेगा 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 14 डिग्री सेल्सियस। डार्विन में मौसम के साफ रहने की उम्मीद है। तापमान रहेगा अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। अंत में बात कर लेते हैं भारत की राजधानी दिल्ली की। यहां का तापमान रहेगा अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस। इसी के साथ समाचार समाप्त होते हैं। बाकी खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट और फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको ज़रूर पता होगा www.sbs.com.au/hindi।
लाइक करें, शेयर करें या कमेंट करें। SBS हिंदी को फेसबुक पर फॉलो करें।